नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्र आज संसद में आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन सुरक्षाकर्मियों ने संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू तथा अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी सहित कई अन्य सांसदों ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र उन नायकों के साहस, वीरता और बलिदान को नमन करता है जिनकी कर्तव्य निष्ठा राष्ट्रीय भावना को निरंतर मार्गदर्शन देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश सुरक्षा कर्मियों के सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर हो रही है। इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। विशेष रूप से पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत ने पेरू को डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए 2.5 लाख से अधिक स्लाइन की बोतल भेजी है। ये भारत की विश्वसनीयता, विकास, साझेदारी की भूमिका को प्रदर्शित करता है। पेरू में भारतीय राजदूत विश्वास सपकाल ने पेरू के स्वास्थ्य मंत्री को 32 टन मानवीय सहायता सौंपी। पेरू के अधिकारियों ने इस मदद के लिए भारत की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह सहायता भारत की ग्लोबल साउथ देशों के साथ एकजुटता की भावना को दिखाती है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। श्री चौहान ने कहा कि सेना प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध है। हैदरा के पास डुंडीगल में स्थित भारतीय वायुसेना अकादमी के संयुक्त दीक्षांत परेड में जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैनात किया गया है। ये पर्यवेक्षक फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन तक इन राज्यों में उपस्थित रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में 58 लाख से अधिक जनगणना प्रपत्र अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इन मतदाताओं के नाम अस्थायी रूप से मसौदा सूची से हटा दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में अब तक 92% से अधिक मतदाता प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने बढ़त बना ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रहा। एलडीएफ ने यूडीएफ और एनडीए दोनों के हाथों कई स्थानीय निकायों पर अपना नियंत्रण खो दिया। तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में एनडीए ने 101 सदस्यीय निगम में 50 सीटों पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए राज्य के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि तिरुवनंतपुरम में पार्टी को मिला जनादेश केरल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक स्थित युवा भारतीय क्रीड़ांगन में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी के कार्यक्रम में आयोजक सद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान बड़े पैमाने पर अराजकता और तोड़फोड़ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था जावेद सलीम ने बताया कि घटना की प्रारंभिक जांच जारी है। इससे पहले राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार को कार्यक्रम के आयोजकों और प्रायोजकों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने अपना संन्यास वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि उन्होंने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।